राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर यशोदानंदन जय गज जनरंजन यशोदा जय यशोदानंदन जय गज जनरंजन जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरा बनचारी जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज गचार्य अष्टोत्तर सहस्री श्रीमदिष्ट डिवाइन ग्रेस अभयचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जयतलीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाख गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री श्री गौनताय की जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री श्री प्रहलाद नृसिंह देव की जय। समभेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास महामहोत्सव की जय। श्री दीपदान महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज द सिंबल डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा। तो चूंकि पुरुषोत्तम अधिक मास चल रहा है और हम लोगों ने इसके बारे में कुछ तो सुना था, दीननायक प्रभु ने कुछ बातें बताई थी, लेकिन इसमें बहुत विस्तृत महात्म्य है। पुरुषोत्तम अधिक मास का जो महात्म्य है वो बहुत विस्तृत है। बृहन्नारदी पुराण में 31 अध्याय हैं इसके महात्म्य के, तो इसलिए हमने विचार किया कि इसकी कुछ कथा हम सुनेंगे, क्योंकि समय तो नहीं है, इतना समय तो नहीं है कि अधिक सुना जाए, तो जितना समय है। तो इसके जो 31 अध्याय हैं तो उनमें से मैंने 6 अध्याय पढ़ के सुनाए थे पंजाबी बाग मंदिर में, और 5 अध्याय पंचशील मंदिर में, 1 अध्याय द्वारका मंदिर में, कुल मिला के 12 अध्याय में सुना चुका हूँ। तो 12 अध्याय की कथा मैं संक्षेप से सुना करके फिर 13वां अध्याय सुनाऊंगा। तो इसमें शुरू जो होता है वो होता है उस घटना से कि सृष्टि जब प्रारंभ हुई, तो सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहली बार अधिक मास आया, तो इसका नाम पुरुषोत्तम अधिक मास नहीं था। सब लोगों ने इसकी निंदा की, इसका अपमान किया, मल मास कह करके कि बहुत अपवित्र है, इसमें जो है सूर्य की संक्रांति भी नहीं है, इसमें कोई शुभ कर्म नहीं किया जाता है और इसका कोई स्वामी भी नहीं है। इस तरह से इसकी सबने निंदा की और इस बहुत निराश हो गया। तो कुछ मनुष्यों ने इसे सुझाव दिया कि तुम वैकुंठ में जाओ भगवान के पास, तुम्हारा दुख वही दूर करेंगे। तो ये मल मास वहाँ वैकुंठ में जा कर के अपना कष्ट बताता है कि मेरा हर जगह अपमान हो रहा है, इससे अच्छा है कि मैं अब अपना शरीर ही छोड़ दूँ, मैं अब जीवित ना रहूँ, क्योंकि ऐसे जीवन से कोई लाभ नहीं है जहाँ हर जगह तिरस्कार हो, हर जगह अपमान हो। तो भगवान विष्णु इस मल मास का हाथ पकड़ करके गोलोक धाम में ले जाते हैं और सांत्वना देते हैं कि तुम्हारा कष्ट भगवान श्री कृष्ण दूर करेंगे। तो गोलोक धाम में इसको ले जाते हैं और भगवान कृष्ण से इसका कष्ट बताते हैं कि इसको बहुत कष्ट मिल रहा है, आप ही इसका कष्ट दूर कर सकते हैं। हरि बोल। इसकी आवाज़ कुछ ठीक नहीं ना। हरि बोल। आवाज़ आ रही है सबको? तो मैंने क्या बताया, क्या बताया? भगवान विष्णु ने मल मास को जो है कहा कि गोलोक धाम में श्री कृष्ण ही तुम्हारे कष्ट को दूर कर सकते हैं। तो भगवान विष्णु गोलोक धाम में ले जाते हैं और इसका कष्ट बताते हैं श्री कृष्ण को, और श्री कृष्ण कहते हैं कि अब मैं इसको अपनी सब शक्तियाँ, अपना ऐश्वर्य, अपना गुण जितना भी है मेरा, सब इसको प्रदान करता हूँ और अपना नाम भी प्रदान करता हूँ। तो इसलिए इसका जो है नाम पुरुषोत्तम अधिक मास तब से हो गया। और इसके बाद फिर इसमें एक घटना आती है कि भगवान कृष्ण कामेक वन में जाते हैं, जिस समय पांडवों को 12 वर्ष का वनवास मिला था। दुर्योधन ने कपट जुए के द्वारा उनका राज्य छीन लिया था और 12 वर्ष का वनवास दिया था। तो कामेक वन में 5 पांडव और द्रौपदी निवास करते थे बहुत कष्ट में। तो कृष्ण पांडवों और द्रौपदी से मिलने गए, तो उसमें काफ़ी लंबी चर्चा हुई। तो कृष्ण ने फिर ये भी बताया कि द्रौपदी को ये जो कष्ट मिला दुशासन के द्वारा, जो अपमान मिला, तो इसके पीछे कुछ कारण है। और फिर भगवान बताते हैं कि द्रौपदी मेधावी ऋषि की कन्या थी, और माता का देहांत पहले ही हो चुका था और कन्या के इतने गुण थे कि कोई भी पुरुष उससे विवाह करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि कन्या बहुत योग्य है। और मेधावी मुनि को भी जो बड़ी चिंता हुई कि कन्या के योग्य जो है कोई वर नहीं है, तो बहुत चिंतित थे। उसी चिंता में उनका शरीर भी छूट गया और कन्या का विवाह नहीं हुआ, तो कन्या बहुत दुखी हुई। अब उसकी ना माता थी ना पिता थे और पति तो था ही नहीं, तो बहुत कष्ट में वो दिन बिताने लगी, दिन रात रोती थी। तो दुर्वासा मुनि मेधावी मुनि के मित्र थे, तो मित्र की पुत्री को देखने के लिए आए दुर्वासा मुनि और उसने अपना कष्ट बताया कि मेरा तो बहुत कष्ट है। तो दुर्वासा मुनि ने कहा कि देखो, 3-4 महीने के बाद पुरुषोत्तम अधिक मास आने वाला है, इसका तुम जो है व्रत करो, इसमें स्नान करो और उपवास करो, तो इससे तुम्हारा सब कष्ट दूर हो जाएगा। तो उसने दुर्वासा मुनि के साथ उल्टी बहस की कि आप मुझे गलत बात बता रहे हैं, गलत शिक्षा दे रहे हैं, ये तो मलमास है, ये तो अशुद्ध है, और सब देवताओं की और सब महीनों की पूजा छोड़ करके आप इसकी पूजा क्यों बताते हैं? जितने देवता हैं वो भी तो कामनाओं को पूरी करने वाले हैं, और माघ है और वैशाख है, ये भी देव मन मास बड़े पवित्र हैं। तो इस तरह से दुर्वासा मुनि, ये पहली बार है कि दुर्वासा मुनि ने श्राप नहीं दिया उसको। दुर्वासा मुनि ने सोचा कि मेरे मित्र की पुत्री है और ये मेरे श्राप को सहन नहीं कर पाएगी, और अबोध बालिका है, बड़े बड़े देवता लोग भी पुरुषोत्तम मास की महिमा को नहीं जानते हैं, तो इसने जो है जो कुछ भी किया है तो मैं श्राप नहीं दूंगा। दुर्वासा मुनि ने कहा कि मैं तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, लेकिन इसका दंड तो तुम्हें जरूर मिलेगा, इस जन्म में या किसी जन्म में दंड जरूर भोगना पड़ेगा तुम्हें, और मैं जा रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। तो फिर इसने जो है शिव जी की आराधना का विचार किया और 9,000 साल तक बड़ी कठोर तपस्या की। शिव जी प्रसन्न भी हुए, लेकिन साथ साथ वो उन्हें आक्रोश भी था कि इसने पुरुषोत्तम मास का जो है तिरस्कार किया, निंदा की है। तो प्रसन्न भी हुए, लेकिन अंदर से उनको आक्रोश भी था कि इसको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इसने अपमान किया पुरुषोत्तम मास का। तो शिव जी आए और बोले कि ठीक है, बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो वो शिव जी से बार बार बोल रहे कि मुझे पति दीजिए, पति दीजिए, 5 बार बोला मुझे पति दीजिए। तो शिव जी ने कहा कि तुम्हें 5 पति मिलेंगे, बहुत गुणवान होंगे, प्रसिद्ध होंगे, सूरवीर होंगे, सब कुछ होगा, बहुत गुण होंगे, तुम्हें 5 पति मिलेंगे। तो फिर वो बड़ी उदास हो गई कि आपने मुझे 5 पति का वरदान दिया, ये तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात है, किसी पुरुष के 5 स्त्रियां हो सकती हैं लेकिन एक स्त्री के 5 पति तो कभी सुने नहीं गए। तो शिव जी ने कहा कि तुमने चूंकि अपमान किया था पुरुषोत्तम अधिक मास का, जिसके हम सब सेवक हैं, जितने तीर्थ हैं, जितने देवता हैं, सब पुरुषोत्तम मास के सेवक हैं और हम सब लोग इसका सेवन करते हैं, तुमने अपमान किया था, इसलिए तुम्हें इसका दंड तो मिलेगा ही। ये कहकर के शिव जी ने फिर ज़्यादा बात ही नहीं की और अंतर्धान हो गए। उसके बाद ये अपने आश्रम में रही और इसका शरीर छोड़ गया, और इसकी तपस्या बहुत थी, तपस्या से बहुत पवित्र भी थी। तो फिर राजा द्रुपद के यज्ञ कुंड से इसने जन्म लिया, अयोनिजा किसी स्त्री के गर्भ में नहीं आई, यज्ञ कुंड से उत्पन्न हुई, द्रौपदी के नाम से विख्यात हुई। तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि द्रौपदी इस जीवन में मेरे लिए अनन्य भक्त थी, मेरे परायण थी, मेरे प्रति इसका सौहार्द था, मेरी सखी थी, सब कुछ था, लेकिन पुरुषोत्तम मास का अपराध करने के कारण मैंने भी इसकी रक्षा नहीं की, और दुशासन ने इसको घसीटा, इसके केस खींचे और बहुत ही कटु वचन भी सुनाए। लेकिन फिर जब इसने मेरा नाम लिया तो नाम की भी महिमा है कि इसने मेरे नामों का उच्चारण किया और जो है मेरी तीव्र पुकार की, तो मैंने फिर इसकी रक्षा की। फिर भगवान कहते हैं कि तुम 5 पांडव और द्रौपदी मिलकर के अभी तक पुरुषोत्तम अधिक मास का आप लोगों ने कुछ नियम नहीं बनाया, और पुरुषोत्तम अधिक मास इस वनवास काल में भी बीत चुके हैं, तो अब जो आएगा इसमें आप लोग जो है पुरुषोत्तम अधिक मास का व्रत करिए, और इससे आप जो है आगे चल करके आपको राज्य भी प्राप्त होगा और आपके शत्रुओं का विनाश होगा और आपको समृद्धि सब कुछ प्राप्त होगी। तो ऐसा कहकर भगवान कृष्ण चले गए द्वारका, और तो इस तरह से सूत भगवान कृष्ण ने फिर ये भी बात बताई थी, एक संकेत किया था कि राजा दृढ़ धनवा ने पुरुषोत्तम अधिक मास का जो व्रत किया था उससे उनको वैकुंठ की भी प्राप्ति हुई और राज्य ऐश्वर्य सब प्राप्त हुए। तो उसमें फिर नारद जी ने प्रश्न किया, क्योंकि ये जो भगवान कृष्ण का संवाद है जो पांच पांडवों द्रौपदी के साथ जो हो रहा है उसको सुना रहे हैं नारायण ऋषि नारद जी से, और उसी संवाद को सुना रहे हैं सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य में। तो नारद जी ने फिर प्रश्न किया कि दृढ़ धनवा कौन है और जो है उन्होंने कैसे पुरुषोत्तम मास का व्रत किया और उनको कैसे सब कुछ सुख समृद्धि प्राप्त हुई। तो फिर नारायण ऋषि ये राजा दृढ़ धनवा की कथा सुनाते हैं। तो अब मैं 13वां अध्याय शुरू कर रहा हूँ, यहीं से शुरू कर रहा हूँ। ऋषि लोग पूछ रहे हैं नैमिषारण्य में किससे, सूत गोस्वामी से। ऋषि ने पूछा कि हे सूत जी, हे महाभाग्यशाली, हे प्रवचनकर्ताओं में श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास की आराधना करने से दृढ़ धनवा ने कैसे सुंदर साम्राज्य, पतिव्रता रानी, पुत्र पौत्र आदि को पाया और किस प्रकार भगवान के गोलोक को प्राप्त किया जो बड़े बड़े योगियों के लिए भी दुर्लभ है। सूत सूत महाभाग वदनो वदताम्बर दृढ़ धनवा कथम प्राप पुरुषोत्तम सेवनां स्वराज्यम पुत्र पौत्रादीन ललनाम च पतिव्रतां कथम च भगवन लोकम अवाप योगी दुर्लभम। हे तात, आपके मुख कमल से निरंतर कथासार सुनते सुनते हम लोगों को उसी प्रकार तृप्ति नहीं हो रही है जिस प्रकार अमृत पान करने वालों को तृप्ति नहीं होती है। श्रृण्वताम ते मुखाम भोजात कथासारम मुर्मुहो अलम बुद्धिर नन्दस्तात यथा पीयूष है पानतहा। अतः प्राचीन कथा को विस्तार के साथ कहिए, हमारे भाग्य के बल से ही विधाता ने आपका दर्शन दिलाया है। अतो विस्तर तो ब्रोही इतिहासम पुरातनम अस्मद भाग्य बले नैव धात्रा संदर्शितो भवान। तो सूत जी ने कहा, हे विप्रो, सनातन मुनि नारायण ने जिस प्राचीन इतिहास को नारद जी से कहा था वही इतिहास अब आप लोगों को मैं सुना रहा हूँ। जैसा मैंने गुरु जैसा मैंने गुरु जी की मुंह जवानी राजा दृढ़ धनवा की पापनाशक चरित्र सुना है वही आप सब मुनि लोग सुने। श्री नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मन नारद जी, मैं राजा दृढ़ धनवा की प्राचीन कथा को कह रहा हूं जो गंगा जी के समान पवित्र करने वाली है, सुनिए। शृण्वन्तु मुनयः सर्वे चरित्रम पापनाशनम यथाधीतम गुरुमुखान राज्ञो वै दृढ़ धन्वनः। मुने शृणु प्रवक्ष्ये हम भूपस्य दृढ़ धन्वनः कथां पुरातनीं रम्यां सुरधनीमिव पावनीं। हे देश के रक्षक श्रीमान बुद्धिमान सत्य पराक्रमी चित्रधर्मा नाम के राजा हुए। कौन, क्या नाम? चित्रधर्मा नाम के राजा, कौन सा देश है? है देश के राजा हुए। उनके दृढ़ धनवा नाम से विख्यात एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र हुए जो सब गुणों से संपन्न थे, सत्यवादी थे, धार्मिक थे, सदाचारी थे। उनकी आंखें विशाल, कान तक फैली हुई थी, चौड़ी छाती और लंबी भुजाएं थीं। वे महातेजस्वी अपने गुणों के साथ दिन प्रतिदिन बढ़ने लगे। उस मेधावी ने प्रसन्नता पूर्वक गुरु के मुख से एक बार सुन लेने पर ही व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, शिक्षा, कल्प, षडंग के साथ संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया। ऐसा मालूम पड़ता था मानो वे पहले ही पढ़ चुके हों। कौन? दृढ़ धनवा। फिर गुरु दक्षिणा देकर उनकी विधिवत पूजा कर उनकी आज्ञा से बुद्धिमान राजकुमार दृढ़ धनवा अपने पिता चित्त धर्मा की नगरी में आ गए। इन्हें देखकर इनकी राजधानी में रहने वाले सभी वर्गों के लोगों के नेत्र शीतल हो गए। राजा चित्रधर्मा भी अपने सुयोग्य राजकुमार को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि राजकुमार युवक थे, समस्त धर्मों के ज्ञाता थे और प्रजा का पालन करने में समर्थ हो गए थे। इस असार संसार में सबसे बढ़कर और कौन सुख हो सकता है। तब राजा चित्रधर्मा ने विचार किया कि अब मैं दो भुजाधारी मुरलीधर, प्रसन्न मुख, शांत और भक्तों को भय प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण की आराधना करूंगा। क्योंकि योग्य पुत्र हो गया तो उसके ऊपर भार छोड़ करके मैं क्या करूंगा, कृष्ण का भजन करूंगा। किसने सोचा? चित्रधर्मा ने सोचा। आराधयामि श्री कृष्णम द्विजम मुरलीधरम प्रसन्न वदनम शांतम भक्तानाम अभय प्रदम। जिस तरह ध्रुव, अम्बरीश, सरयाति, ययाति, शिबी, रंदिदेव, शशबिंदु, भगीरथ, भीष्म पितामह, विदुर, दुष्यंत, भरत, पृथु, उत्तानपाद, प्रहलाद, विभीषण, ये सब राजा और इनके अतिरिक्त बहुत से अन्य शासक लोग भी विविध प्रकार के भोगों का परित्याग करके इस नश्वर शरीर से भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके शाश्वत पद को प्राप्त हो गए। उसी प्रकार मैं भी रानी, महल और राजकुमार आदि के स्नेह रूपी बंधन को तोड़कर वन में जाकर हरि भजन करूँगा। इति चान्य च राजानस् त्यक्त्वा भोगान् अनेकशः अध्रुवेण ध्रुवं प्राप्ता आराध्ये पुरुषोत्तमम्। अतो मयापि कर्तव्यम् अरण्ये हरिसेवनम् चित्त्वा स्नेहमयं पाशं धारागारे सुतादिषु। ऐसा मन में निश्चय करके अपने योग्य राजकुमार दृढ़धनवा का राज तिलक करके स्वयं विरक्त हो शीघ्र महर्षि पुलह के आश्रम में चले गए। कौन चले गए? चित्रधर्मा चले गए। वहां पहुंचकर समस्त कामनाओं से निष्प्रह होकर भोजन करना छोड़कर निरंतर श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए तपस्या करने लगे। तत्र गत्वा तपस्ते पे श्री कृष्णम मनसा स्मरन् निष्प्रिया सर्व कामेभ्यो निराहारो निरंतरम्। बहुत समय तक तप करके वे भगवान के परम धाम को चले गए। जब दृढ़धर्मा ने सुना कि हमारे पिता को वैष्णवी गति प्राप्त हो गई है तो पिता के वियोग से उन्हें शोक हुआ, परंतु परम धाम की प्राप्ति से उन्हें हर्ष भी हुआ। किसको हर्ष हुआ? दृढ़धर्मा को शोक भी हुआ और हर्ष भी हुआ। तब पितृभक्त राजा ने धर्मशास्त्र के ज्ञाता विद्वानों के कथनानुसार समस्त प्रेत क्रिया, दशाह, एकादशाह, श्राद्ध आदि संपन्न किए। राजनीति के ज्ञाता राजा दृढ़धर्मा अत्यंत सुंदर थे, पवित्र थे, पुष्करावर्तक नागर नामक नगर में राज्य करने लगे। इनकी रानी का नाम गुण सुंदरी था, वो विदर्भ देश की राजकुमारी थी। समस्त पृथ्वी पर उसके समान सौंदर्य शालिनी अन्य कोई महिला नहीं थी। किसके समान? गुण सुंदरी के समान। रानी ने सुंदर, निपुण और सदाचारी चार पुत्रों को और चारुमती नाम की एक कन्या को जन्म दिया। राजकुमारों के नाम थे चित्रवाक, चित्रवाह, मणिमान और चित्रकुंडल। ये सभी सूरवीर और अपने अपने नामों से पृथक पृथक विख्यात हुए। राजा दृढ़धर्मा अपने गुणों से प्रसिद्ध हुए। वे शांत, इंद्रियों को वश में करने वाले, दृढ़व्रति, रूपवान, गुणवान, शूर, लक्ष्मी से संपन्न, प्रकृति से सुंदर स्वभाव वाले, चारों वेदों और व्याकरण, ज्योतिष आदि छह अंगों को जानने वाले, वाणी से सबको मोह लेने वाले, धनुर्विद्या में पारंगत, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य रूपी शत्रुओं को भली भांति जीतने वाले और शत्रुओं की हस्ती को मिटा देने वाले थे। क्षमा में पृथ्वी के समान थे। कौन? दृढ़धर्मा। गंभीरता में समुद्र के समान थे। समता में ब्रह्मा जी की भांति समान थे। प्रसन्न होने वालों में शिव जी के समान थे। एक पत्नी के साथ जीवन व्यतीत करने वालों में दूसरे श्री राम के समान थे। अत्यंत भीषण पराक्रमशाली और सद्धर्म का पालन करने वालों में दूसरे सहस्त्र अर्जुन कार्तिकीय के समान थे। श्री नारायण बोले, एक समय की बात है कि रात्रि में सोते हुए उस राजा दृढ़धर्मा को ये चिंता सताने लगी। अब देखो, कोई चिंता नहीं, लेकिन एक चिंता हो गई, है ना। ये भौतिक संसार का ये स्वभाव है, कोई चिंता नहीं होती तो भी चिंता पैदा होती है। तो राजा दृढ़धर्मा सब प्रकार से सुखी थे, ये एक चिंता उनको समा गई। अहो, इतनी विपुल संपत्ति किस महान पुण्य के कारण हुई? क्या सोचने लगे, मुझे इतना सब कुछ प्राप्त हुआ है, कौन सा मैंने महान पुण्य किया है? ना तो मैंने तपस्या की, ना तो दान दिया, ना कभी हवन यज्ञ ही किया। अब अपने सौभाग्यशाली होने का कारण पूछूं तो किससे पूछूं? कौन मुझे बताएगा कि मैंने कौन सा ऐसा तप या व्रत किया है? अपने जीवन काल में तो कुछ नहीं किया मैंने, किससे पूछूं? इस प्रकार सोचते सोचते सारी रात बीत गई। प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त में उठकर, ब्राह्म मुहूर्त 4:10 है ना, 4:10 से 4:58 तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान किया, सूर्य का उपस्थान कर भगवान की कलाओं का तर्पण किया, देवालय में जाकर पूजन किया, ब्राह्मणों को दान दिया, उन्हें नमस्कार किया और घोड़े पर सवार हो गए। अनंतर शिकार खेलने की इच्छा से शीघ्र वन की ओर चले गए। वहां बहुत से मृगों, सुअरों, शेरों और नील गायों का शिकार किया। उसी समय राजा दृढ़धनवा के बाण से घायल हुआ एक मृग तुरंत बाण से विदा होने पर भी एक वन से भागता हुआ दूसरे वन में घुस गया। राजा भी जहां जहां खून टपका हुआ था उसी राह से मृग के पीछे पीछे गए, परंतु मृग किसी झाड़ी में छिप गया था और राजा वन में भटकते रहे। प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने एक झील देखी जो समुद्र के समान खूब लंबी चौड़ी थी। वहां गए, झटपट पानी पीकर उसके किनारे की ओर लौट करके वहाँ उन्होंने देखा कि एक बड़ा विशाल बरगद का पेड़ है जिसकी छाया घनी है। उसकी जड़ में घोड़े को बांधकर राजा बैठ गए। उसी समय वहाँ पर कहीं से कोई सुंदर तोता आ गया। वो राजा को मोहित करने वाली अतुलनीय है मधुर मनुष्य की बोली बोलने लगा। बड़ी सुंदर कथा है, सुन रहे सब लोग ध्यान से। राजा दृढ़धनवा अभी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और उनको काफ़ी विश्राम भी मिल गया है और प्यास भी बुझ गई है। तो एक तोता जो है मनुष्य की वाणी में मधुर बोला, तत्र गमत खगा कश्यन कीरा पर शोभन मानुषी मेरे अनवाणीम अतुलाम नृप मोहिनी। राजा दृढ़धनवा को अकेले बैठे देखकर उन्हीं को संबोधित करता हुआ तोता एक ही सुंदर श्लोक को बार बार दोहराने लगा। एक ही श्लोक बार बार बोल रहा है तोता, किस भूतल पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर हे राजन आप तत्व के संबंध में विचार नहीं कर रहे हैं, तो भला बताइए इस भवसागर को कैसे पार करेंगे? विद्यमान अतुल सुखम आलोक्याति भूतले न चिंतयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेष्यसि। वो इसी श्लोक को राजा के सामने बार बार पढ़ने लगा। तोते की वाणी सुनकर राजा प्रसन्न भी हुए और साथ ही मोहग्रस्त भी हुए। इस तोते ने इस श्लोक को बार बार दोहराते हुए क्या कह दिया है? जो वेदांत के सार से युक्त है नारियल के फल के समान बड़ी कठिनाई से समझ में आने योग्य है। तोता कैसा है? तोते की आवाज, तोते का जो श्लोक है नारियल के फल के समान बड़ा मुश्किल है प्राप्त करना, क्योंकि बहुत कठिनाई से टूटता है, उससे गिरी मिलती है ना, है? तो इसी प्रकार से श्लोक को समझना बड़ा कठिन है, नारियल के फल के समान। बड़ी कठिनाई से समझ में आने योग्य है। क्या ये व्यास जी की प्रिय पुत्र सुखदेव मुनि तो नहीं है? तोते के रूप में आए हैं व्यास के पुत्र सुखदेव मुनि तो नहीं है ये? कौन है ये? जो मुझे श्री कृष्ण के मंदमति अनुचर को भवसागर में डूबा हुआ देखकर राजा परीक्षित के समान कृपा पूर्वक उद्धार करने की कामना से यहां चले आए हैं। कि मैं कृष्ण को भूला हुआ हूं तो परीक्षित का उद्धार करने के लिए जैसे सुखदेव गोस्वामी आए, तो ऐसे ही सुखदेव गोस्वामी मेरा भी उद्धार करने के लिए आ गए। किस रूप में? तोते के रूप में आ गए। वे इस प्रकार सोच विचार कर ही रहे थे कि तब तक उनकी सेना भी पास आ गई। उनकी सेना उनको ढूंढते ढूंढते आ गई। उधर तोता भी राजा को इस प्रकार आत्मबोध कराकर स्वयं अंतर्धान हो गया। राजा अपनी नगरी में आकर तोते की वाणी की शुद्धि कर करके किसी के बुलाने पर भी नहीं बोलते हैं। उन्होंने खाना पीना और सोना सब बंद कर दिया। तब रानी ने आकर एकांत में राजा से इसका कारण पूछा। रानी गुण सुंदरी बोली, हे पुरुष व्याघ्र आप में ये अन्य मनस्कता कहाँ से आई है? हे महाराज उठिए उठिए, भोजन पानी कीजिए, गुमसुम रहना छोड़ दीजिए। इस प्रकार रानी के समझाने बुझाने पर भी, अनुनय विनय करने पर भी राजा कुछ नहीं बोले। उनके मस्तिष्क में तोते की परम तत्व की वो वाणी समा गई थी जिसे देवता लोग भी नहीं जान सकते। वो युवती रानी दीर्घ श्वास लेकर अपने पति की मानसिक व्यथा से अत्यंत पीड़ित हुई और अपने भर्ता की उत्कट चिंता के कारण अनभिज्ञ रह गई। राजा का भी चिंता करते करते बहुत समय बीत गया, परंतु संदेह समुद्र से पार करने का कोई कारण नहीं दिखाई दिया। ये संदेह का समुद्र इतना गहरा और इतना अपार है कि कोई उपाय नहीं है इसको पार करने का। नारद जी ने प्रश्न किया, क्योंकि नारद जी कथा सुन रहे हैं, किससे? नारायण ऋषि से। कहाँ? गंधमादन पर्वत पर, है ना। तो नारद जी ने प्रश्न किया, हे ऋषि प्रवर नारायण, इस प्रकार चिंताग्रस्त राजा दृढ़धन्वा का आगे चलकर क्या हुआ, सो आप बताइए। क्योंकि भगवान विष्णु के भक्त का थोड़ा सा भी निर्मल आख्यान सुन लिया जाए तो वह पापों का नाश कर देता है। इति चिन्तयतो धरापतेर वदजातं दृढधन्वनश्च किं विमलं चरितं हि वैष्णवं कलसंहन्त्य मनाक्षुतं मुने। श्री नारायण ने कहा, किसी समय चिंतित रहने वाले राजा दृढधन्वा के महल में महर्षि वाल्मीकि जी आए। कौन आए? वाल्मीकि जी, जिन्होंने परम विस्मयकारक और दिव्य श्री राम के चरित्र का वर्णन किया है आदि कवि, है ना। अध चिंता तो रस्यास्य गृहं वाल्मीकिरायो रामचरितं दिव्यं चकार परमाद्भुतम्। राजा ने दूर ही से मुनि को आते देखकर आतुरता से शीघ्र उठकर भक्तिभाव के साथ उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। देखो, अभी तक तो किसी से बात नहीं करते हैं, खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं, है ना, लेकिन जैसे वाल्मीकि आए तुरंत दौड़ करके उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। विधि पूर्वक पूजा कर उत्तम आसन पर उन्हें बैठाकर उनके चरणों को अपनी गोद में लेकर दोनों हाथों से पाद प्रक्षालन किया। संपूज्य स्थापयामास तम ऋषिम परमासने पादापंक गृत्वा कराभ्याम समय लालय। धोए हुए चरणामृत को बड़े प्रेम के साथ सिर पर चढ़ाया। फिर राजा ने तोते के वाक्य की शुद्धि करके मधुर वाणी में कहा। दृढ़धन्वा बोले, हे मुनीश्वर, मैं कृतार्थ हुआ। इस समय मेरे समान भाग्यशाली और कोई नहीं है। आज मेरा जन्म सफल हुआ। हे प्रभु, आज मेरा मनोरथ पूरा हुआ। आज आपके प्रत्यक्ष दर्शन होने से मेरा वेदाध्ययन आदि फलदायक हो गया है। हे संसार के पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाले, मैं अपने सौभाग्य की बड़ाई का क्या वर्णन करूं। श्रुतम मे सफलम जातम यद भवान अक्षि गोचरा किम वर्ण्यम मे महान भाग्यम जगत पावन पावन। तो श्री नारायण जी कहते हैं कि मुनिराज वाल्मीकि जी से इस प्रकार कहकर राजा दृढ़धन्वा चुप हो गए। वाल्मीकि ऋषि ने उन्हें इतना विनयुक्त देखकर जनता को हर्षित करते हुए परम प्रसन्न होकर कहा। वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, धन है ऐसा कहना तुम्हें शोभा देता है, परंतु हे राजन, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अपने मन की सारी बातें कह डालिए और कुछ पूछने की आकांक्षा हो तो उसे भी स्पष्ट पूछिए। दृढ़धन्वा बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके चरण कमल की कृपा से मुझे सदा सुखी सुख है, परंतु मेरे मन में एक महान संदेह कांटे की तरह चुभ रहा है। क्या क्या चुभ रहा है? कांटे की तरह संदेह, कांटे की तरह संदेह चुभ रहा है। उसे आप दूर कर दीजिए। वो कांटा वन में रहने वाले एक तोते के मुंह से निकला है। वो कांटा कहाँ से निकला है? एक तोते के मुख से निकला है। एक समय की बात है कि शिकार खेलने के लिए मैं घने वन में चला गया। घूमते घामते मुझे एक तालाब दिखाई पड़ा। मैं उसका जल पी लेने के बाद थकावट दूर करने की आकांक्षा से एक विशाल बरगद के पेड़ की छाया में बैठ गया। उसकी छाया बहुत भली, अत्यंत घनी और चित्त को लुभाने वाली थी। उस पर एक तोता बैठा हुआ था जिसकी आकृति हृदय को प्रफुल्लित करने वाली थी। जो ही मेरी दृष्टि उस पक्षी के ऊपर पड़ी तो ही सामने आकर उसने एक श्लोक पढ़ा कि इस भूतल पर विद्यमान अतुल सुख को देखकर, हे राजन, आप तत्व के संबंध में चिंतन मनन नहीं कर रहे हैं तो भला बताइए इस भवसागर से कैसे पार जाएंगे। विद्यमान अतुल सुखम आम आलोक्याते वे भूतले न चिंतयसि तत्त्वं त्वं तत्कथं पारमेश्यसि। तोते के मुंह से इस प्रकार का वाक्य सुनकर मैं अत्यंत विस्मित हो गया। हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि तोते के कथन का क्या तात्पर्य है। आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो मेरे आंतरिक संशय का निवारण कर सकते हैं। मुझे इतना साम्राज्य, सुख, भव्य आकृति वाले चार पुत्र, लावण्य शालिनी, पतिव्रता रानी, हाथी, घोड़ा, रथ, पैदल सेना, अपार समृद्धि, हे ब्राह्मण, मेरे किस पुण्य के प्रताप से समय मिल रहे हैं। इन सब प्रश्नों पर विचार करके संक्षेप में मुझे बताइए। राजा के प्रश्नों को सुनकर मुनिराज वाल्मीकि प्राणायाम करके एक मुहूर्त तक ध्यान अवस्थित होकर हथेली पर आंवला रखे हुए के समान उन्हें विश्व की भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली सभी घटनाएं प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती हैं। हृदय में निश्चय करके राजा से बोले, कौन बोले? कितनी देर तक उन्होंने ध्यान किया? एक मुहूर्त, मतलब 48 मिनट तक ध्यान किया। तब राजा के पिछले जन्म की बात वे जान गए और बोले, महर्षि वाल्मीकि ने कहा, हे राजन, आप अपने पूर्व जन्म के चरित्र का विवरण सुनिए। हे शासक प्रवर, पूर्व जन्म में आप द्रविड़ देश में ताम्रपर्णी नदी के तट पर रहने वाले ब्राह्मण थे और आपका नाम था सुदेव। क्या नाम था? सुदेव आपका नाम था। आप बहुत धर्मात्मा, सत्यवादी और जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहने वाले, वेदाध्ययन में पारंगत, विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर अग्निहोत्र आदि विविध यज्ञों द्वारा आपने भगवान श्री हरि को प्रसन्न किया। इस प्रकार जीवन व्यतीत करते हुए आपको सर्वांग सुंदरी एक पत्नी मिली। वो गौतम ऋषि की सुलक्षणी कन्या गौतमी के नाम से अत्यंत प्रसिद्ध हुई। जैसे भवानी पार्वती शिव जी की सेवा करती है, वैसे ही वो बहुत प्रेम के साथ आपकी सेवा शुश्रूषा करती थी। गृहमेद विज्ञान से धर्म पूर्वक आचरण करते हुए बहुत दिन बीत गए, परंतु संतान का मुख देखने को नहीं मिला। किसको? सुदेव को। एक दिन वह आसन पर बैठे हुए थे और पत्नी सेवा कर रही थी, तब वे अत्यंत दुखित होकर गदगद स्वर से बोले, हे सुंदरी, इस संसार में पुत्र से बढ़कर कोई दूसरा सुख नहीं है। तपस्या और दान करने से जो पुण्य होता है उसका सुख तो परलोक में मिलता है, किंतु शुद्ध वंश उत्पन्न संतति इस लोक तथा परलोक दोनों में कल्याणकारिणी होती है। ऐसे श्रेष्ठ पुत्र के ना होने से मेरा जीवन निष्फल हो गया। मैंने ना तो पुत्र का लालन पालन किया, ना तो उसे ब्रह्मचर्य आश्रम में वेदाध्ययन करने के लिए भेजा और ना तो उसका विवाह संस्कार किया, इसलिए मेरा जन्म बेकार चला गया। कौन बोले? सुदेव। किससे बोले? अपनी पत्नी से। अब तत्काल मेरी मृत्यु हो जाए, अब आयु के प्रति कोई अनुराग नहीं रहा। अपने पति की इस प्रकार वचनों को सुनकर गुणवती का चित्त बहुत दुखी हुआ। वो धीर, पति प्रेम परायण और प्रिय वचन बोलने में पारंगत, अपने प्राणनाथ को ढाढ़स बंधाने के लिए सरल वचन कहने लगी। गौतमी बोली, नहीं नहीं, हे प्राणेश्वर, ऐसी तुच्छ बात अब मत कहिए। आप जैसे भागवत धर्म के विद्वान व्यक्ति मोह के चक्कर में नहीं पड़ते। हे प्रभु, आपका धर्म तो एकमात्र सत्य है, आपने स्वर्ग पर विजय प्राप्त की है। हे व्रतधारी, आप जैसे ज्ञानी पुरुषों को पुत्रों द्वारा सुख की प्राप्ति करने की आशा कैसी? प्राचीन काल में राजा चित्रकेतु जब पुत्र के शोक से संतप्त हुए थे, तब महर्षि नारद और अंगिरा ऋषि ने आकर पुत्र शोक से मुक्त कर उनका उद्धार किया। उसी प्रकार राजा अंग अपने कुपुत्र वेन से संतप्त हो रात्रि में एक वन से दूसरे वन में चले गए। इसी तरह हे नाथ, आपको भी संतान क्लेश देने वाली होगी। इतने दृष्टांतों के रहते हुए भी यदि आपको सदाचारी पुत्र होने की लालसा है, तो हे तपोधन, आप प्रसन्नतापूर्वक भगवान जगन्नाथ हरि की उपासना कीजिए। प्राचीन काल में महर्षि कर्दम ने जिनकी आराधना करके पुत्र को प्राप्त किया, जो सांख्य दर्शन शास्त्र से प्रशंसित योगी राजों में अग्रगण्य कपिल देव मुनि कहलाए। अपनी धर्म पत्नी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर ब्राह्मण वैसा ही निश्चय कर गौतमी के साथ ताम्रपर्णी नदी के तट पर गए। वहां जाकर पवित्र तीर्थ में स्नान करने के बाद अत्यंत उग्र तप करने लगे। 5-5 दिन पर सूखे पत्ते खाकर जल पीते थे। क्या? 5-5 दिन में क्या खाते थे? सूखे पत्ते खाते और जल और पानी पीते थे। इस प्रकार तप करते हुए तप मूर्ति सुदेव ब्राह्मण को 4000 वर्ष बीत गए। कितना? 4000 वर्ष बीत गए। उनके इस तपस्या से तीनों लोग कांप उठे। उनके अत्यंत भीषण तप को देखकर भक्तों के ऊपर दया करने वाले भगवान शीघ्रता से गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हो गए। अत्युग्रम गतान्येवम् तत्तपो अत्युग्रम गतान्येवम् तत्तपो दृष्ट्वा भगवान् भक्तिवत्सलः प्रादुर्बभूव तरसा गरुड़ परिसंथितः। श्री नारायण बोले कि नवीन मेघ के समान सुंदर वर्ण वाले विश्व की रक्षा करने में समर्थ चार भुजाधारी भगवान प्रसन्न मुख वाले मुरारी का दर्शन करके सुदेव शर्मा ब्राह्मण ने भगवान मुकुंद को मुदित मन से साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तम दृष्ट्वा जलदोपमं मुरारिम दूरदंडे जगन अवन क्षमे चतुर्भी संलक्ष्य मुदित मुखम सुदेव शर्मा साष्टांगम नदीकरण नदी मकरोन मुदा मुकुंदम। श्री नारायण ने कहा, किससे कहा है? श्री नारायण सुना रहे हैं कथा को, किसे सुना रहे हैं? नारद जी को सुना। श्री नारायण ने कहा, अनंतर सुदेव शर्मा ब्राह्मण दोनों हाथ जोड़कर गदगद वाणी से हे भक्तवत्सल देवाधिदेव भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। ततस्तुष्टावतम देवम श्री कृष्णम भक्तवत्सलम बद्धांजलि पुटो भूत्वा सुदेवो गदगदाक्षरम। हे देव देवेश, हे तीनों लोगों को भय प्रदान करने वाले, हे प्रभु, हे विश्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपके शरण में आया हूँ। नमस्ते देव देवेश त्रैलोक्या भय दे प्रभो सर्वेश्वर नमस्ते स्तु त्वामहं शरणं गतः। हे परमेशान, हे शरणागत वत्सल, मेरी रक्षा कीजिए। हे विश्व वंदनीय, हे शरण में आए हुए जनों के भय का नाश करने वाले, आपको प्रणाम है। पाहि माम परमेशान शरणागत वत्सल जगद्वंदे नमस्ते स्तु प्रपन्न भय भंजन। आप जय स्वरूप हैं, जय के देने वाले हैं, जय के ईश्वर हैं, जय के कारण हैं, विश्व के आगार हैं, विश्व में स्थित हैं, विश्व के कारण के भी कारण हैं। जय स्वरूपम जयदम जयेशम जय कारणम विश्वाधारम विश्व संतम विश्व कारण कारणम। विश्व के एकमात्र रक्षक हैं, दिव्य हैं, विश्व के आगार हैं, विश्व के पंजर स्वरूप हैं, फलों के बीज हैं, फलों के आधार हैं, फलों के मूल हैं, फलों को देने वाले हैं। विश्व रक्षकम दिव्यम विश्वग्नम विश्व पंजरम फल बीजम फलाधारम फल मूलम फल प्रदम। तेजो मूर्ति हैं, तेज के दाता हैं, संपूर्ण तेजस्वियों में श्रेष्ठ हैं, कृष्ण हैं, विष्णु हैं, वासुदेव हैं, दीनवत्सल हैं, मैं आपकी वंदना करता हूँ। तेजास्वरूपम तेजोदम सर्व तेजस्विनोवरम कृष्णम विष्णुम वासुदेवम वंदे हम दीनवत्सलम। कौन कह रहा है? कौन कह रहे हैं? नहीं, नारायण तो सुना रहे हैं नारद जी को, लेकिन ये स्तुति सुदेव शर्मा भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे हैं। तेजा स्वरूपम तेजोदम सर्व तेजस्विनोवरम कृष्णम विष्णुम वासुदेवम वंदे हम दीनवत्सलम। हे जगत के प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मा आदि भी समर्थ नहीं है। जनता की पीड़ा को नाश करने वाले, फिर मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद और साधारण मनुष्य हूँ, आपकी स्तुति करने में किस प्रकार समर्थ हो सकता हूँ। न त्वाम ब्रह्मादयो देवा स्तोतुम सक्ता जगत प्रभो कथम बंधो मनुष्यो हम अल्प बुद्धिर जनार्दन। आप अत्यंत दुखी दीन और अपने भक्त को अर्थात मेरी उपेक्षा कर रहे हैं, तब हे प्रभु, आपका विश्व बंधुत्व लोक में व्यर्थ हो रहा है। अति दुख तरम दीनम त्वद्भक्तम माम उपेक्षसे तत्कथम लोके बंधुत्वम प्रभो लोके प्रथागतम। वाल्मीकि मुनि कहते हैं कि सुदेव शर्मा ब्राह्मण भगवान विष्णु की इस प्रकार स्तुति करने के बाद उनके सामने खड़े रहे। भगवान हरि उनके वचनों को सुनकर मेघ के समान गंभीर वाणी में बोले। श्री हरि ने कहा, हे वत्स, आपने जो तपस्या की वो पूर्ण रूप से संपादित की है। अब हे महामति, हे तपोमूर्ति, क्या अभिलाषा है सो मुझसे कहिए। आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं वही वरदान आपको दूंगा, क्योंकि इसके पहले ऐसा दारुण तप किसी ने नहीं किया था। सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दया निधान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे पुराण पुरुषोत्तम, मुझे सदाचारी पुत्र होने का वरदान दीजिए। यदि प्रीतोष हे नाथ है, दीन बंधो दया निधे, सत्पुत्रम देहि मे विष्णु पुराण पुरुषोत्तम। क्योंकि हे हरि, पुत्र के बिना गार्हस्थ जीवन मुझे सोना सोना सा लग रहा है, इसके प्रति मुझे कोई रुचि नहीं रह गई है। इस प्रकार सुदेव शर्मा के ग्लान युक्त वाक्यों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले। श्री हरि ने कहा, हे ब्राह्मण, पुत्र को छोड़कर बाकी जितने अदेय पदार्थ हैं उन्हें मैं आपको प्रदान करूंगा, क्योंकि हे वत्स, विधाता ने आपके लिए पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है। मैंने आपके ललाट पटल पर अंकित समस्त अक्षरों को देख लिया है, इसमें 7 जन्म तक आपको पुत्र सुख नहीं लिखा है। इस प्रकार वज्रपात के समान श्री हरि के वाक्य को सुनकर सुदेव शर्मा धरती पर उसी प्रकार गिर पड़े जिस प्रकार जल के कट जाने से पेड़ गिर जाता है। पति को गिरे हुए देखकर उनकी पत्नी अत्यंत दुखी हुई और पुत्र की आकांक्षा से वंचित अपने स्वामी की ओर देखकर रोने लगी। उसके बाद धीरज धरकर अपने गिरे हुए पति से बोली, गोद में कहने लगी, उठिए नाथ, उठिए, क्या आपको मेरी बातें स्मरण ना रहीं? विधाता ने जितना सुख दुख भाल देश पर लिख दिया है वही मिलता है, रमानाथ इसमें क्या कर सकते हैं? मनुष्य अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं, अभागे मनुष्य का किया हुआ सभी प्रयत्न उसी प्रकार व्यर्थ चला जाता है जैसे मरते समय औसत देना निरर्थक होता है। जिसके देव प्रतिकूल हो जाते हैं वो चाहे जो कुछ भी करे उसके सब उद्योग निष्फल हो जाते हैं। समस्त वेद शास्त्रों में यज्ञ दान तप सत्य और व्रत करने की अपेक्षा हरि भजन करना श्रेष्ठ कहा गया है, किंतु हरि भजन से भी श्रेष्ठ भाग्य बल है। इसलिए हे ब्राह्मण, सब पर से विश्वास हटाकर उठिए और शीघ्र भाग्य के ही सहारे रहिए, इसमें श्री हरि से क्या लेना देना। तो बड़ा अपमान हो गया ना भगवान का, बल्कि भगवान के भजन से भी अगर कुछ नहीं होता है तो अपने भाग्य का ही आश्रय लो, भगवान का भी आश्रय लेने की जरूरत नहीं। इस प्रकार गौतमी के तीव्र शोक से भरे हुए वचनों को सुनकर गरुड़ जी भगवान विष्णु से कहने लगे। हम गरुड़ जी बोले कि बहुत यहाँ तो बड़ी इज्जत जा रही है आपकी। उस समय क्षोभ के कारण वे थर थर कांप रहे थे। गरुड़ जी को बड़ा क्षोभ हो रहा था कि अपने स्वामी का जो है इस प्रकार का अपमान हो रहा है, तिरस्कार हो रहा है। लेकिन हुआ क्या, क्योंकि भगवान ने खुद ही ऐसी बात बोली जिससे उनका ही तिरस्कार हो रहा है। गरुड़ जी ने कहा, हे हरि, शोक के समुद्र में गोता लगाते हुए ब्राह्मणी को और उसी प्रकार आंखों से टप टप आंसू बहाते हुए ब्राह्मण की अवस्था को देखकर, हे दीन बंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों को भय प्रदान करने वाले, हे प्रभु, आज आपकी वो दया कहाँ चली गई जिसके संबंध में कहा जाता है कि आप अपने भक्तों को कष्ट में पड़ा हुआ देखकर सहन नहीं कर सकते। दीन बंधो दया सिंधो भक्तानाम अभयंकर है, भक्त दुखा सहिष्णुस्ते, दया देखवागता प्रभु। आश्चर्य है, आप ब्राह्मणों के रक्षक हैं, इस समय वो आपका धर्म कहाँ चला गया? अपने भक्तों को देने के लिए आपके हाथों में चारों प्रकार की मुक्ति रहती है, फिर भी हाय, आपके भक्त लोग मुक्ति की कामना न करके आपकी श्रेष्ठ भक्ति की ही वांछा करते हैं। आपके भक्तों के सामने 8 सिद्धियां दास के समान खड़ी रहती हैं, ऐसी तो आपकी आराधना का महत्व सर्वत्र विख्यात है। तो इस ब्राह्मण को एक पुत्र कामना, ब्राह्मण की एक पुत्र कामना को पूरा करने में आपको कितना परिश्रम लगता है? पुत्र देने में क्या है? इतनी सिद्धियाँ और इतनी मुक्तियाँ, ये सब आपके भक्त चाहते नहीं हैं, हैं? और वो पुत्र अगर मांगे तो पुत्र देने में आपको क्या परिश्रम है? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। आज पहली बार मैं देख रहा हूँ आपका व्यवहार बहुत ही अलग हो गया है, बिल्कुल बदल गया है। ये कैसा आपका व्यवहार है? आप पुत्र नहीं दे सकते हैं? 4 प्रकार की मुक्तियाँ दे सकते हैं, 7 प्रकार की सिद्धियाँ, क्या क्या आप दे सकते हैं? जो व्यक्ति हाथी का दान कर सकता है उसके लिए अंकुश दान में कितना परिश्रम लगेगा? हाथी दे सकते हैं, अंकुश नहीं दे सकते? किसने कहा? गरुड़ जी ने कहा। अब आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमल की आराधना नहीं करेगा कि भाग्य से ही सब कुछ मिलना है तो कृष्ण की चरणों की सेवा से क्या फायदा? आज से कोई भी मनुष्य आपके चरण कमल की आराधना नहीं करेगा गजम अर्पयता विष्णु हंकुशे का परिश्रम अतः परम न केनापि सेवितेते पदाम्बुजम। जिस व्यक्ति के भाग्य में जो लिखा होता है वही उसे निश्चित रूप से मिलता है। संसार में आज से ये प्रथा चल पड़ेगी और आपकी भक्ति तो रसातल को चली जाएगी। हे नाथ, आपके करने और ना करने की क्षमता है आप में, करने ना करने की क्षमता है, ये बात सर्वत्र विख्यात है, किंतु वही क्षमता आज इस ब्राह्मण को पुत्र ना देने से नष्ट हो जाएगी। इसलिए आप इस ब्राह्मण को एक पुत्र होने का वरदान अवश्य दीजिए। देखिए, एक सुदामा ब्राह्मण थे जो आपकी आराधना करके उत्कृष्ट वैभव के अधिकारी हो गए। दूसरे सांदीपनी ब्राह्मण थे जो आपकी कृपा से अपने मरे हुए पुत्र को पा गए। इसीलिए पुत्र की लालसा से ये दोनों युगल आपके शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार गरुड़ के आग्रह वाक्य को सुनकर भगवान विष्णु ने अमृतमय वाणी में गरुड़ से कहा, हे पक्षीराज, हे विनता नंदन, इस ब्राह्मण को मनोवांछित एक पुत्र शीघ्र दे दो। अब इतनी छोटी चीज अगर बता रहे हो तो मैं क्यों दूं, तुम ही दे दो। अपनी इच्छा के अनुकूल इस प्रकार भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी का अंतःकरण अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने अत्यंत पीड़ित चित्त वाले ब्राह्मण को एक अनुरूप भव्य पुत्र प्रदान कर दिया। तो श्री नारायण कहते हैं, किससे कहते हैं, नारायण सुना रहे कथा, नारद जी को सुना रहे हैं कि हे नारद जी, महर्षि वाल्मीकि ने जो परम विस्मयकारी चरित्र राजा दृढ़धर्मा से कहा उसी चरित्र को मैं कह रहा हूं। ध्यान आ गया ना कि वाल्मीकि जी सुना रहे हैं ये कथा, किसको, दृढ़धर्मा को। सुनिए, वाल्मीकि मुनि ने कहा, हे दृढ़धर्मा राजन, मेरी बात सुनिए। भगवान केशव के आदेश से गरुड़ जी ने उस ब्राह्मण से इस प्रकार कहा। गरुड़ जी बोले, हे ब्राह्मण, आपको 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है, ऐसा जो वाक्य भगवान हरि ने कहा सो इस समय तो आपको वैसा ही रहेगा, तो भी प्रभु के आदेश से कृपा करके मैं आपको पुत्र प्रदान कर रहा हूँ। हे तपोधन, आपको मेरे अंश से एक पुत्र होगा जिसे गौतमी के साथ आपके मनोरथ सफल होंगे, जिससे परंतु पुत्र जन्य दुख भी आप दोनों को मिलेगा, ये भी अटल है, दुख भी मिलेगा। अब क्या दुख मिलेगा ये नहीं बताया, लेकिन दुख भी मिलेगा, सुख मिलेगा और दुख भी मिलेगा। हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं क्योंकि आपकी बुद्धि का झुकाव भगवान की तरफ तो हुआ। भगवान के प्रति सकाम भक्ति हो अथवा निष्काम भक्ति, भगवान को दोनों ही प्रिय हैं। क्या अकाम सर्व काम हुआ है ना, तो भगवान को तीव्र भक्ति प्रिय है, चाहे अकाम हो चाहे सर्व काम सकाम। धन्यो से दुजसारदूल है यत्ते जाता हरो मति सकामाप्यथे निष्कामा हरिर्भक्तिर हरिभक्तिर हरे प्रियाम। मनुष्य का शरीर तो पानी की बुलबुले के समान क्षण भर में मिट जाने वाला है। ऐसे क्षण भंगुर जीवन को पाकर जो व्यक्ति भगवान के चरणों का अपने हृदय में ध्यान करते हैं वे धन्य है। जल बुद्वत पुनसाम शरीरम क्षण भंगुरम तदा साध्य हरे पादम धन्य चिंतयते हृदय। इस अत्यंत दुस्तर संसार सागर से तारने वाले श्री हरि के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। कौन कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, वाल्मीकि मुनि तो कह रहे हैं दृढ़धर्मा को, वो तो है, लेकिन अभी कौन कह रहा है, किससे, नारायण कह रहे हैं, नारद जी से, वो भी तो है, इन ये बात कौन कह रहा है, किससे, गरुड़ जी कह रहे हैं सुदेव ब्राह्मण से। इस अत्यंत दुस्तर संसार सागर से तारने वाले श्री हरि के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। भगवान श्री हरि की कृपा के लेस मात्र ही से मैंने आपको पुत्र होने का वरदान दिया, ये तो कुछ भी नहीं है। गरुड़ जी बता रहे हैं कि मतलब ऐसा नहीं सोचना कि भगवान नहीं कर सकते, पुत्र नहीं दे सकते, ये तो कुछ भी नहीं, उनकी कृपा का लेस मात्र है जो मैंने दिया है। भगवान श्री हरि की कृपा के लेस मात्र ही से मैंने आपको पुत्र होने का वरदान दिया। अपने मन में श्री हरि का चिंतन करते हुए सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करिए और उदासीन भाव से इस भावना के साथ सांसारिक सुखों का उपभोग करिए। महर्षि वाल्मीकि जी बोले, ध्यान रहे, वाल्मीकि जी भी बोल रहे हैं, महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि ऐसा अलौकिक वर देकर युगल दंपति को देखते देखते शीघ्र गरुड़ पर आरूढ़ होकर भगवान अपने वैकुंठ धाम को चले गए। दंपत्यो पश्यतो सद्यो दत्त्वा वरम अनुत्तमम खगद्वारा हरये शीघ्रम ययो निजय निकेतनम। सुदेव शर्मा भी अपनी पत्नी के साथ अपने मनोवांछित वर को पाकर घर लौट आए, उत्तम गृहस्थ आश्रम के सुख को भोगने लगे। कुछ समय के बाद गौतमी को गर्भ रह गया। दसवां महीना लगने पर गर्भ पूरा हुआ। प्रसूति काल आने पर गौतमी ने एक उत्तम पुत्र को जन्म दिया। पुत्र उत्पन्न होने पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुए। अच्छे अच्छे ब्राह्मणों को बुलवाकर जात कर्म संस्कार किया। भली भांति स्नान करने के बाद सुदेव शर्मा ने उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। अपने भाई बंधुओं अन्य ब्राह्मणों को आमंत्रित कर सुदेव शर्मा ने नामकरण संस्कार संपन्न किया। दयालु गरुड़ जी ने मुझे प्रेम पूर्वक पुत्र दिया है। शरद ऋतु की चंद्रमा के समान इसका उदय हुआ है। सुखदेव मुनि की भांति तेजस्वी है, इसलिए मेरे ऐसे प्रिय पुत्र का नाम सुखदेव होगा। क्या नाम होगा? सुखदेव होगा। माता पिता के मन में आनंद देता हुआ और पिता के भावी जीवन की आशा विलासा के साथ शुक्ल पक्ष में जिस प्रकार चंद्रमा दिन प्रतिदिन बढ़ते हैं, उसी प्रकार वो पुत्र भी शीघ्रता के साथ बढ़ने लगा। पिता ने प्रसन्नता पूर्वक अपने संस्कार कर गायत्री मंत्र का उपदेश दिया। अनंतर वेदारंभ संस्कार हुआ और वो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने लगा। ब्रह्मचर्य के तेज से युक्त होने पर वो बालक साक्षात दूसरे सूर्य के समान सुशोभित होने लगा। बुद्धि ने सागर के समान उस कुमार ने वेदाध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरु वत्सल बालक ने अपनी कुशाग्र बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया। गुरु के एक बार कहने से ही उसने समस्त विद्या को ग्रहण कर लिया। महर्षि वाल्मीकि जी सुना रहे हैं किसको? दृढ़धन्वा को, कि एक समय की बात है कि करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली देवल ऋषि आए। उन्हें देखकर सुदेव शर्मा ने मुदित होकर दंडवत प्रणाम किया। किसको प्रणाम किया? देवल ऋषि को। किसने प्रणाम किया? सुदेव शर्मा ने प्रणाम किया। देवल मुनि की विधि पूर्वक पूजा की और आसन की व्यवस्था की। देव दर्शन देवल उस आसन पर बैठ गए। अपने चरणों पर पड़ते हुए बालक को देखकर बोले। देवल मुनि ने कहा, सुदेव आप धन्य हैं, आपके ऊपर भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए क्योंकि आप दुर्लभ और श्रेष्ठ पुत्र पा गए। क्योंकि ऐसा नम्र बुद्धिमान बोलने में पटु वेदाध्ययन करने वाला सुशील पुत्र कहीं भी किसी के यहाँ नहीं देखा। हे वत्स यहाँ आओ, तुम्हारे हाथ में क्या विचित्रता देख रहा हूँ। सुंदर छत्र दो चमर यव रेखा के साथ कमल का चिन्ह है। हाथी की सूंड की तरह घुटने और लटकने वाली दोनों भुजाएं और कान तक फैले हुए विशाल ये नेत्र हैं। गोल आकार का शरीर, उदर में त्रिवली की रेखाएं। इस प्रकार उस बालक के विषय में कहकर उस ब्राह्मण को उत्कंठित देकर देवल ऋषि फिर बोले, आहा सुदेव आपका ये पुत्र विविध गुणों का निधान है। गले की हंसली मांस में छिपी हुई है। संघ के समान उतार चढ़ाव वाला गला है। चिकने घुंघराले बाल हैं। लंबी चौड़ी छाती है। विस्तृत गर्दन है। दोनों कान एक से हैं। बैल के समान कंधे हैं। संपूर्ण सुलक्षणों से संपन्न सौभाग्यशाली पुत्र है, किंतु एक ही महान दोष है जिससे सभी गुण व्यर्थ हो गए। इतना कहकर सिर पीटते हुए लंबी सांस लेकर देवल मुनि कहने लगे, पहले आयु की जांच करें, फिर लक्षणों का वर्णन करें, क्योंकि अल्प आयु वाले बालकों के अच्छे लक्षण होने का क्या प्रयोजन है। सिद्ध हे सुदेव आपका ये पुत्र 12वें वर्ष में पानी में डूबकर मर जाएगा, इसलिए आप चित्त में शोक ना करिए। जो होनहार है वो होकर रहेगा, इसमें संशय नहीं है। जिस प्रकार मरणासन्न व्यक्ति को औषध देना व्यर्थ है, उसी प्रकार भावी को टालने की कोई प्रतिक्रिया नहीं है। महर्षि वाल्मीकि जी बोले कि ये कहकर देवल मुनि तो ब्रह्मलोक चले गए। इधर गौतमी के साथ सुदेव शर्मा धरती पर पछाड़ा खाकर गिर पड़े। देवल ऋषि की कही हुई बात को स्मरण कर करके पृथ्वी पर पड़े पड़े चिरकाल तक विलाप करते रहे। अनंतर गौतमी ने अपने पुत्र को गोद में बैठाकर धीरज के साथ पुत्र के मुंह का चुंबन किया। फिर पति से कहने लगी। गौतमी बोली, हे द्विजराज होने वाली घटना से भयभीत नहीं होना चाहिए। जो होने वाला नहीं है वो कभी नहीं होगा, जो होनहार है वो तो होकर रहेगा। निषदराज नल अयोध्या नरेश के पुत्र श्री राम और पांडु के पुत्र युधिष्ठिर क्या महान विपत्ति में नहीं पड़े। राजा बलि को भी बंधन में बंधना पड़ा। यादवों का नाश हुआ, हिरण्याक्ष का वध हुआ, भीषण वृत्रासुर का भी विनाश हुआ, सहस्त्रार्जुन कार्तवीर्य का सिर काटा गया, दशानन रावण के भी मस्तक काटे गए। हे मुनि रकुल तिलक श्री राम को भी जानकी जी का वियोग उठाना पड़ा। राजर्षि परीक्षित भी ब्राह्मण के साप से मृत्यु के मुख में चले गए। इस प्रकार हे मुनीश्वर जो भावी है वो होकर ही रहेगा, इसलिए हे नाथ। कौन कह रहे? पत्नी कह रही है। किससे? सुदेव से कह रही है। इसलिए हे नाथ उठिए, सनातन भगवान का भजन करिए जो समस्त जीवों के रक्षक और मोक्ष को देने वाले हैं। अतः उत्तिष्ठ हे नाथ है हरिम भज सनातनम शरण्यम सर्व जीवानाम निर्वाण पद दायकम। महर्षि वाल्मीकि जी बोले, महर्षि वाल्मीकि जी बोल रहे हैं किससे, दीर्धनवा से बोल रहे हैं कि अपनी पत्नी की बात सुनकर सुदेव शर्मा स्वस्थ चित्त हो गए और अपने हृदय में हरि की चरण कमलों का ध्यान करके पुत्र से प्राप्त होने वाले भावी शोक को उन्होंने परित्याग कर दिया। तो इस प्रकार से हमने कुछ सुना, तो आगे की बहुत लंबी कथा है और बहुत सुंदर कथा है, तो मैं आपको संक्षेप में बता देता हूँ कि फिर आगे चल करके क्या होता है कि बालक जो है बच्चों के साथ में उस बावली में जो है जल केली कर रहा है, जल विहार कर रहा है, है और जो है जल यंत्र से पानी की छींटे मार रहा है, तो बालक भी जो है उसको छींटे मार रहे हैं, तो उन छींटों से घबरा करके वो जो है और अपने साथियों को धोखा देने के लिए पानी के नीचे चला गया, गहरे पानी में चला गया और गहरे पानी में चला गया अपने नाक को बंद करके। फिर जब उसको घुटन हुई तो उसने चाहा कि मैं ऊपर आ जाऊं, लेकिन फिर ऊपर नहीं आ पाया वो और उसने शरीर छोड़ दिया। जब शरीर छोड़ दिया तो फिर जो माता है वो बहुत विलाप करती है, फिर ये जो पिता सुदेव ब्राह्मण वो बहुत विलाप करते हैं और विलाप जब उन्होंने करना शुरू किया तो उस मरे हुए बालक को गोद में लिए हुए वो जो है एक महीना तक विलाप करते रहे, ना उन्होंने खाया और ना पिया और ना सोए और केवल विलाप ही विलाप करते रहे उस पुत्र के लिए, और एक महीना पूरा बीत गया। और ये सौभाग्य की बात थी, हाँ किसी को कुछ पता नहीं था कि वो पुरुषोत्तम का महीना वो शुरू हुआ था, उस दिन से पुरुषोत्तम का महीना शुरू हुआ था। और जब पुरुषोत्तम का महीना पूरा समाप्त हो गया तो भगवान जो है गरुड़ पर बैठ करके आ गए और बोले कि अब जो है तुम्हारी सब कामनाएं पूरी हो गई क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम महीने का व्रत कर लिया। और जो ब्राह्मण बोला कि जब मैंने 4000 साल तक आपकी आराधना की थी उस समय तो आप इतने प्रसन्न नहीं हुए थे, अभी आप इतने प्रसन्न क्यों होंगे, मैंने तो आपकी आराधना भी नहीं की, मैं तो अपने पुत्र के शोक में डूबा रहा। तो भगवान बोले कि फिर भी आपने जो है पुरुषोत्तम महीने का जो सम्मान कर दिया अनजाने में भी, तो ये बहुत शक्तिशाली महीना है, इसमें आपने जो है पूरी निद्रा का त्याग कर दिया और आपने खाना और पीना बिल्कुल बंद कर दिया और 3 बार स्नान किया, किससे, मेघों का स्नान किया क्योंकि पानी बरसता रहा, तो 3 बार आपको मेघों का स्नान भी प्राप्त हुआ, तो अब आपकी जो है हर कामनाएं पूरी होंगी, अब आप चिंता मत करिए, आपका जो 12 वर्ष का जो बालक था जो मर गया है इसको 12000 साल की आयु मैं देता हूँ भगवान कहते है ना, और आप अब जो है ये सब जो है सुख भोग करके आप मेरे धाम में वैकुंठ में आएंगे और वैकुंठ से फिर इस महीने का आप जो विधि है उसको पूरी करके फिर आप वैकुंठ में आएंगे। तो मतलब कहने का ये है कि कोई मतलब शक्तिशाली विधि होती है जिसका अनजाने में भी जो है कोई व्यक्ति कर लेता है तो उस विधि की शक्ति से कोई वैकुंठ चला जाता है तो फिर वैकुंठ से वापस आता है उस विधि को पूरी करने के लिए, लेकिन फिर वैकुंठ जाना निश्चित है, उसका पतन नहीं है, पतन नहीं कहलाता है वो, कोई एकादशी की विधि से चला जाता है वैकुंठ है ना, तो लेकिन विधि पूर्वक तो उसने नहीं किया लेकिन अनजाने में हो गई, तो वो एकादशी की विधि को पूरी करने के लिए फिर आता है। तो इस तरह से ये जो है नियम होता है, लेकिन ये पतन नहीं कहलाता है, इसमें कोई बंधन नहीं है, उसका वैकुंठ प्राप्त होना निश्चित है। तो वाल्मीकि मुनि बताते हैं किसको, राजा दृढ़धनवा को, कि अब आप पुरुषोत्तम महीने का आपने जो है अनजाने में जो किया था व्रत किया था, अब उसका जो है आप विधि पूर्वक व्रत करिए और आपको तो वैकुंठ जाना ही है निश्चित है, कोई मतलब दूसरी गति नहीं आपकी, आपका इस तरह से है ये पुरुषोत्तम महीने का महात्म्य है। ठीक है, अब समय तो नहीं है, फिर भी एक आध प्रश्न कर सकते हैं, कोई एक आध प्रश्न है किसी का, मैं प्रश्न करूं, आपका प्रश्न, माइक एक प्रश्न है बस केवल अंतिम। गरुड़ जी क्या बहनते, विनता पुत्र, हाँ विनता के पुत्र हैं गरुड़ जी, विनता कश्यप की पत्नी है, वैनतेय कहा जाता है, विनता नंदन कहा जाता है, ठीक है। गरुड़ और अरुण ये दो पुत्र हैं, गरुड़ सूर्य के सारथी हैं और गरुड़ जो है भगवान विष्णु के वाहन हैं, विनता के पुत्र। धन्यवाद। श्री पुरुषोत्तम अधिक मास महात्म्य महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा गौनता स्थित राम लक्ष्मण हनुमान प्रहलाद नरसिंह देव की जय हो। Thank you.